मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे शुद्ध वायु के जो नए मानक निर्धारित किए गए हैं इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातें भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि मैंने अभी आप सबसे ये कहा था कि आप अपने अपने ढंग से मुझे बताइए कि अब डेली ऑडियो लेक्चर में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है, और देखिए आप लोगों की रुचि ही हम लोगों को प्रोत्साहित करती रहती है। लगता है कि हाँ, कोई सुनने वाला है, कोई ध्यान दे रहा है, किसी को कुछ फायदा पहुंच रहा है। तो आप लोगों से बहुत सजेशन मिले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मित्रों, उन सजेशंस को मैंने नोट कर लिया है, उसमें से जो उपयोगी होंगे आप खासकर आपके प्रिपरेशन को लेकर के डेफिनेटली उन्हें मैं लागू करूंगा। अब आइए दूसरी खबरें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। कल के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने कुशीनगर की बात कही थी, क्या आपको ध्यान है कि कुशीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कल किया भी, उसको लेकर के आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने कल दूरदर्शन का न्यूज, और यदि कल आपने दूरदर्शन की खबर देखी हो, सुनी हो, तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरीके से कुशीनगर के बारे में और भी तथ्य बताए जा रहे थे जो सीधे सीधे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को अब आपको इस तरीके से एक्सटेंड करना होगा, स्पेशली अब करना होगा। हालांकि पहले भी मैं जिन घटनाओं को लेता था उसको इसी तरह से एक्सटेंड करके आप लोगों के सामने रखता था, और मुझे बहुत सारे मेल मिले हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से सीधे सीधे डेली ऑडियो लेक्चर्स से आए हुए हैं। और अगर सीधे सीधे न भी आए हुए हों तो मैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप करने का एक अद्भुत काम करता है, मुझे इस बारे में कम से कम कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, आप लोगों का क्या इसके बारे में सोच है, आप लोगों की क्या राय है, ये आप लोगों के ऊपर है। तो दोस्तों, इसी में मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण 8 स्तूप माने जाते हैं, वो 8 स्तूपों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल इस समय विशेष रूप से आया था, और आप जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का कितना प्रभाव है। सम्राट अशोक ने सीधे सीधे अपना दूत वहां भेजा था, और वहां बौद्ध धर्म से संबंधित, या कह लीजिए गौतम बुद्ध का एक बहुत ही विशाल मंदिर है जो मुझे देखने का मौका भी मिला है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो श्रीलंका बौद्ध धर्मी देश है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो दूसरे राष्ट्र हैं और जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है, आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी तरह से 6-7 राष्ट्रों के नाम दे दें और कहें कि इनमें से कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो मैं आपके सामने उन देशों के नाम रख रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, और बेहतर होगा कि अगर आप रिपीट कर लेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक वो बातें मौजूद रह जाएंगी, और उससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि आप एटलस पर जाकर के इन्हें लोकेट करने की कोशिश करें, उससे चीजें और ज्यादा इमेज फॉर्म में दिमाग में मौजूद हो जाती हैं। देखिए, जो देश हैं, जापान, यस, बौद्ध धर्म का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है, जापान, मंगोलिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, थाईलैंड में तो गौतम बुद्ध की लेटी हुई बहुत बड़ी प्रतिमा है, पीले रंग की बहुत ही चमचमाती हुई प्रतिमा, और बहुत बड़ी प्रतिमा है, मुझे इसे भी देखने का सौभाग्य मिला है, लाओस, श्रीलंका, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल और सिंगापुर, ये कुछ देश हैं। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो बकायदे इन देशों के जो राजनयिक थे इस समारोह में उपस्थित भी थे। मित्रों, कल जो मैंने अपनी बात थोड़ी सी खत्म की थी क्वाड के ऊपर, क्वाड टू के ऊपर, हालांकि अभी इसे नाम नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ लोग नया क्वाड भी कह रहे हैं, न्यू क्वाड भी कह रहे हैं, लेकिन चलिए आगे हम देखेंगे। तो उस पर जो 2-3 पॉइंट्स जो रह गए थे उन्हें मैं आज रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए, इसमें एक देश इसराइल, आप जानते हैं कि जो इसराइल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, और भारत को टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में तो उसने कमाल किया ही हुआ है। तो भारत खासकर इस क्वाड के माध्यम से इसराइल से बहुत लाभ उठा सकता है, नो डाउट कि इसराइल को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन भारत को भी इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। हम भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और भारत के संबंध आप देख ही रहे हैं कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर अमेरिका को चीन के प्रभाव को रोकना है, और आप जानते हैं कि एक नए किस्म का वार शुरू हो गया, जिसे कोल्ड वार आप कह लीजिए या ट्रेड वार कह लीजिए, जिसमें अमेरिका को चुनौती देने वाला जो राष्ट्र है वो चीन है, तो अगर चीन को उसे रोकना है और खासकर एशिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में, तो अमेरिका भारत के सहयोग के बिना ऐसा नहीं कर सकता। तो भारत को भी अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। ये दूसरा राष्ट्र हो गया, भारत है ये तीसरा राष्ट्र, और चौथा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब आप देखिए कि ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये उस क्षेत्र का जो गल्फ कंट्रीज है उनका बहुत ही प्रमुख देश है, और भारत के साथ इसके शुरू से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अगर हम पूरे गल्फ कंट्रीज की बात को ले लें या स्पेशली यूएई की ही बात को ले लें, तो वो हमारे लिए तो एनर्जी का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे ज्यादा जो तेल हम मंगाते हैं वो इसी क्षेत्र से मंगाते हैं, तो वो हमारी जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर हमें संतुलित रखना है, तब भी यहां हमें संबंध ठीक ठाक रखने होंगे। इसके साथ ही साथ यहां बहुत से भारतीय काम कर रहे होते हैं, गल्फ कंट्रीज में बहुत से भारतीय काम करते हैं, वो विदेशी मुद्रा हमारे यहां भेजते हैं, तो इसलिए भी हमारी जरूरत है। तो स्क्वाड से भारत को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। लेकिन यहां जो एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं वो लगातार एक सजेशन दे रहे हैं, और वो ये है कि भारत को इसके साथ ही साथ ईरान के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले को लेकर के हो सकता है कि भारत और ईरान में थोड़ी सी दूरी पैदा हो जाए, तो ईरान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसे आप अंडरलाइन कर ले अपने दिमाग में। तो ये क्वाड से संबंधित थोड़ी सी बातें थी। दोस्तों, अभी मैंने अफगानिस्तान की बात कही तो मैं एक घटना और बताना चाहूंगा कि अभी जो मॉस्को है, रशिया की जो राजधानी, वहां अफगानिस्तान शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि गए हुए हैं, और बाकायदे तालिबानी के जो अधिकारी हैं उनसे बात भी हुई है, और तालिबानियों ने ये एश्योर किया है कि वे अपनी भूमि का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, जो भारत की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है और सबसे पहली मांग भी है। यहां आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ठीक है, तालिबानी जो भी हैं वो हम उसके विचारों से सहमत हैं नहीं हैं, उनकी जो शासन प्रणाली है वो क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान को अगर हम लें तो ठीक है, अफगानिस्तान में उनका शासन है, हम उनकी कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान सरकार के रूप में हम ये कदम नहीं उठा सकते कि नहीं हम तो उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पसंद की सरकार नहीं है। ये डिप्लोमेटिक स्टाइल नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अखबारों में बार बार ये बात कही जाती है कि भारत को अब जो भी वहां सरकार बन गई है, तालिबानियों की सरकार है, उनके साथ अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इससे पहले भारत के प्रतिनिधि ने बाकायदे कतर में तालिबानियों से बात की थी, और अभी जो मॉस्को शांति जो बैठक हो रही है इसमें भी बाकायदे बातचीत की जा रही है। लेकिन डेफिनेटली हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो शर्तें हैं वो हम रखेंगे ही। एक बात यहां मैं और बताना चाहूंगा कि अब जो अफगानिस्तान का नाम है, जो तालिबानी सत्ता में आने के बाद जो उन्होंने परिवर्तन किया है, अब इसका एग्जैक्ट नाम हो गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस बात का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है शुद्ध वायु के जो नए मानक निर्धारित किए हैं। ये जो मानक निर्धारित किए गए हैं, दोस्तों आपसे अगर मैं कहूं कि कौन निर्धारित करता होगा शुद्ध वायु के मानक, जो वैश्विक संस्था है, अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए कि वो संस्था कौन हो सकती है, किसको यह अधिकार है, या यूं कह लीजिए कि किस पर यह दायित्व तो है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो शायद आप सही बात तक पहुंच जाएंगे, और वो होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। WHO ने अब शुद्ध वायु के मानक निर्धारित किए हैं। ऐसा नहीं कि इससे पहले मानक नहीं थे, 2005 में पहले निर्धारित किए गए थे, अब इसमें संशोधन किया गया है। जो संशोधन किए गए हैं अब उन्हें ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे पीएम के बारे में आप पढ़ते हैं, वायु में पीएम डैश इतनी मात्रा है। पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएम। तो अब आप देखिए कि ये पहले क्या था और अब क्या हो गया है। पहले जो इसकी मात्रा थी, वार्षिक मात्रा, कि एक साल में किसी भी क्षेत्र में, तो देखिए अब जो नए निर्देश दिए गए हैं उसमें क्या बात कही है। अब ये कहा गया है कि वायु में पीएम 2.5 की सांद्रता 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक होनी चाहिए। मैक्सिमम, मैं रिपीट कर रहा हूं, पीएम 2.5 की सांद्रता 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। पहले यह क्या थी, अब ये जो 10 माइक्रोग्राम है इसको अब आप बढ़ा करके दुगना कर दीजिए, वो थी 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ये पहले नियम था, तो उस 20 को घटाकर अब 10 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपकी वायु को और ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए इसी तरह की व्यवस्था पीएम 10 के लिए की गई है। पीएम 10 यानी कि अब ये थोड़े से बड़े कण हो गए, तो इन कणों के लिए जो पहले जो नियम थे वो थे कि 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, इसकी जो सांद्रता थी वो होनी चाहिए थी 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, इसे भी अब घटा करके 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। तो वहां 20 से घटा करके 10 कर दिया गया है और यहां 20 से घटाकर 15 कर दिया गया है, और ये वार्षिक है, सालाना है। दोस्तों ये नए दिशा निर्देश हैं, इस पर हम लोग, इसका क्या इंपैक्ट होगा कभी आगे चल करके बात करेंगे, लेकिन प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको ये जो नए दिशा निर्देश हैं या जो नए मानक हैं ये मालूम होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, श्वेता राज, ज्ञानेंद्र यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और वंशिका मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।